नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली कथा में एक छोटा सा हिस्सा रह गया था कालिया नाग की कथा में। कालिया नाग को दमन करने के बाद में जब भगवान ने कहा कि तुम चले जाओ, तो कालिया फिर अभयदान प्राप्त करके फिजी देश में चला गया। तब भगवान जब बाहर आए जमुना जी के ठंडे जल से, बहुत देर रहे जमुना जी के अंदर, तो बहुत ठंड हो गए थे वो, बहुत ठंड लग रही थी उनको। तो उसके आगे थोड़े से आगे 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे एक छोटा सा पर्वत है, उसका नाम है द्वादश आदित्य टील। उस पर भगवान चढ़ गए और वहां बैठे। जब उस पर भगवान चढ़कर बैठ गए तो वहां पर 12 सूर्य आए। हमारे वर्ल्ड में कितने सूर्य हैं? वैसे 12 सूर्य आए एक साथ, और उन्होंने भगवान को गर्मी दिया। मेडिकल में क्या बोलते हैं उसको? खाली हीट ही बोलते हैं उसको, बोलते हैं हीट फोमेंटेशन। बोलते कि नहीं बोलते? यस सेल्वी मैडम, कॉल्ड एज हीट फोमेंटेशन। तो भगवान को उन्होंने गर्मी दिया, और जब गर्मी दिया तो भगवान फिर वार्म हो गए। हाँ, उष्ण हो गए, मतलब हॉट नहीं हो गए बट ठंडे थे वो, नॉर्मल हो गए। उसके बाद वो हीट देते रहे तो भगवान का पसीना आया, और पसीना वो सब जगह घूम घूम के ऐसा इकट्ठा हो गया, एक कुंड बन गया। उसका नाम है प्रस्कंदन सरोवर। जब मैं 31 साल पहले यहाँ पर आया था तो मैंने उस कुंड का दर्शन किया है। अभी वो समय के अनुसार नष्ट हो गया, सूख गया, और वहाँ पर अभी गार्डन बना दिया उन्होंने। जब मैं सबसे पहली बार आया था तो परिक्रमा रोड मिट्टी का रास्ता था, और परिक्रमा रोड में केवल राइट में मंदिर थे, लेफ्ट में पूरा मैदान था, और जमुना जी का प्रभाव वहाँ से घूमता था। आज केवल 30 साल पहले की बात है, हम लोग जमुना जी में स्नान करते थे, कालिया घाट के पास भी पानी बहता था, और कच्चे रास्ते पर हम लोग चलते थे। समय के अनुसार क्या होता है, नदी कम कम होती है, जमीन पैदा होती है, लोग आश्रम बिल्डिंग बना देते हैं। तो भगवान को जिस जगह पर 12 सूर्यों ने प्रकाश और उजाला, क्या कहते हैं, गर्मी दिया, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वादश। यानी क्या? यानी क्या? 12। आदित्य यानी क्या? सूर्य। टील यानी छोटा पर्वत। सिंपल है, द्वादश आदित्य टील बोलते हैं उसको, जहां भगवान ने बैठकर गर्मी लिया और स्वस्थ हो गए भगवान। तो ये उसका एक हिस्सा बच गया था। उसी पर्वत पर उसके बाद में हमारे जो गोस्वामी हैं सनातन गोस्वामी, वो वहां पर आए। मैंने आपको कथा सुनाई ना परसों, जो जेल में थे भाग गए वहां से, दान सबको दे दिया, फिर 7 कॉइन बचे थे, वो सनातन गोस्वामी वो सब कुछ करते 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 ब्रज में आ गए और यहाँ पर रहने लगे। यहाँ पर वो भिक्षा करते थे। हाँ, बड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको छोटी बता रहा हूँ। यहाँ पर वो भिक्षा करते थे तो एक जगह गए तो देखा कि एक मैया जो है मथुरा में अपने भगवान को डांट रही है, तो कितनी मस्ती करता है, टाइम पे खाने को नहीं आता है, गंदा लड़का कहीं का। तो इनको बड़ा अजीब लगा, रही ये तो मैया भगवान को डांट रही है। तो मैया का भाव था, वात्सल्य भाव था, तो भगवान उसके लिए प्रत्यक्ष मूर्ति में आते थे। कभी कभी मूर्ति से बाहर निकल के जमुना जी के किनारे खेलते थे उनके बच्चों के साथ में, तो देर से आते थे खाने के लिए, तो लोग डांटती थी उनको। तो ये जब भिक्षा मांगने गए तो देखा कि वो डांट रही है, तो ये बोलते मैया भगवान को डांटते नहीं, ऐसा उनकी ऐसी ऐसी पूजा की जाती है, ऐसा ऐसा पूजा करना चाहिए, ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। तो मैया साधु का भाव देखकर डर गई बहुत कि मैंने गलती किया। तो महाराज जी लौट के आए वृंदावन, और मैया जी भी बहुत पश्चाताप करने लगी, मैं इतनी चिल्लाती हूँ भगवान के ऊपर। उस दिन रात को सनातन गोस्वामी को स्वप्न आया, और भगवान स्वप्न में आए और बोले तुमने वो मैया को डांट कर मेरा सारा आनंद बिगाड़ दिया। मैं बड़ा उसकी डांट खाकर बड़ा खुश था, वो तो मेरी माँ बनी हुई थी, और जैसे माँ बालक को डांटती है वैसे वो डांटती थी, बड़ा प्रसन्न था मैं, लेकिन आपने आकर सारा रस का भंग कर दिया। इसलिए मैं अभी वहां पर उनके क्या कहते हैं उसको सम्मान वाले पूजा का अभी मुझे मजा नहीं आ रहा है। वो प्रणाम कर रही है मुझे, बार बार मंत्र बोल रही है, घंटी बजा रही है, क्या क्या कर रही है। पहले ऐसे करती नहीं थी, बड़े भाव से मुझे अर्पण करती थी, हाथ से ऐसे खिलाती थी मुझे। अभी सब बंद हो गया तुम्हारे उपदेश की वजह से, अभी मुझे वहां रहने को मजा नहीं आ रहा है। अभी एक काम करो, कल दोबारा जाओ भिक्षा मांगने के लिए, तो वो मैया मुझे आपको दे देगी और तुम तुम्हारे भाव से मेरी सेवा करना, मैं तुम्हारे संग चलूंगा। और उस मैया के सपने में रात को आई, बोले अभी कल जो बाबा आया था वो दोबारा आएगा कल, तो मुझे उसके हाथ में सौंप देना। तो सपने में मैया बहुत रोती है, अरे मैंने क्या अपराध किया। बोले उनको अपराध नहीं किया कुछ तुमने, मेरे अभी उनके साथ जाने की इच्छा है। तो अगले दिन फिर वहां पर पहुंचते हैं गोस्वामी जी महाराज, और जैसे वो पहुंचते हैं आंखों में आंसू लेकर वो मदन मोहन जी का विग्रह जो है ना, पूरी मूर्ति जो है उनके हाथ में दे देती है। बोले ठाकुर जी ने कहा है कि आपके संग जाना है। तो बोलते मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं भिक्षा मांगता हूं, मैं क्या खिलाऊंगा। ठाकुर जी उनसे बात करते हैं, बोलते जो तुझे भिक्षा मिलेगी वो खिला देना। बोले मेरे पास घर नहीं है, मंदिर नहीं है तुमको रखने के लिए, मैं हर 3 दिन बाद पेड़ बदलता हूँ, मेरा घर भी पेड़ भी फिक्स नहीं है। बोले जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, लेकिन आपके सांगे चलूँगा। तो फिर भगवान को ले आते हैं वृंदावन मथुरा से, और जहाँ पर हम लोग भी कथा किया ना, उसके आगे पेड़ के आसपास रहने लगे वो। और क्या खाते थे वो, भिक्षा मांगते थे तो गेहूँ का आटा मिलता था, उसको जमुना जी के पानी में उसको गोली बनाते थे और आग में उसको भूनते थे, अब ऐसे ही खाते थे बिना नमक के, और वही भोग लगाते थे मदन मोहन जी को। तो फिर मदन मोहन जी बोले अरे यार कितना दिन से तुमने हमको वो वाटी, बाटी बोलते उसको, बाटी बाटी मतलब क्या, गेहूं का बाटी। अभी तो वो घी में तलते हैं, क्या क्या करते हैं उसके अंदर, पहले तो खाली अग्नि में भूनते थे। तो कितने दिन वो बिना नमक की बाटी खिलाओगे, कुछ नमक तो डाल दो उसके अंदर, थोड़ा स्वाद भी आ जाएगा। तो गोस्वामी कहते भगवान मैंने आपसे कहा था मैं फकीर आदमी हूँ, भिक्षा मांग के जीता हूँ, इसलिए आप मेरे पास कुछ है नहीं। आज नमक मांग रहे हो कल मिठाई मांगोगे, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, जो मिल रहा है वो ले लो और हरि कृष्णा थैंक यू। तो फिर उतने भगवान ने लीला किया, एक व्यापारी था रामचंद्र कपूर, हाँ वो पंजाब से आ रहा था, नदी से हवाई जहाज बोट लेकर आया था वो, उसको बहुत नमक था, उसको बेचने का था और भी बहुत सामान था उसके पास। तो वो जब ब्रज में आया ना जमुना जी में, तो उसका जहाज जो है वो तूफान में फंस गया, कैसे भी कूद गया वो पानी में और तैरते हुए किनारे में आ गया, और पुकारने लगा कोई है क्या, मेरे जहाज डूब रहा है, बचाओ बचाओ। तो उस समय मदन मोहन जी मूर्ति से बाहर निकल कर बालक बनकर रेती में खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो इनको पता नहीं है मदन मोहन जी है, तो बालक है, तो बोलते हैं कि बालक कोई है क्या यहाँ पर, मेरा जहाज डूब रहा है। तो मदन मोहन जी बालक बोलते हैं कि पहाड़ पर एक संत बैठा हुआ है सनातन गोस्वामी, वो बचाएगा आपको, उसके बाद जाना। और वो जाता है ऊपर, कौन है सनातन जी महाराज? बोले महाराज हमारा जहाज डूबा हुआ है, उधर घूम रहा है तूफान में, बचाओ। तो बोलते हैं हमारे मदन मोहन जी आपको बचाएंगे। उतने में मदन मोहन जी नीचे जब ये जाते हैं ऊपर, तो नीचे अपना फेटा निकालते हैं और हवा को ऐसे घुमाते हैं ऐसे 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 करके, और उसी हवा के प्रभाव से वो बोट को खींच कर किनारे लेके आते हैं। जब तक वो ऊपर जाके बात करता है तब तक बोट जो है वो किनारे में आती है। तो कहते हाँ मदन मोहन जी बड़े दयालु हैं, उन्होंने मेरा बोट बचा लिया। तो बोलते नहीं 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 महाराज बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा कर दिया। तो महाराज को दोबारा मिलता है, बोलता है महाराज मेरे बोट पे बहुत नमक है, बहुत सारा कीमती सामान भी है, वो तब डूबने वाला था लेकिन आपकी कृपा से बच गया, जितना चाहिए उतना ले लो। तो नमक ले लेते हैं लेकिन बोलते हैं कि बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं नहीं आपकी मुझे सेवा करनी है। तो पूरा सामान बेच के वापस दोबारा आता है, बोलता है मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, आपने मेरी जान बचा ली, सामान बचा लिया, पैसा भी आ गया, मुझे कुछ सेवा करनी है। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवा करना है तो मदन मोहन जी पेड़ के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए मंदिर बनाऊँ। तो रामचंद्र कपूर ने अपने धन से वो मंदिर बनाया पहाड़ पर, उसका नाम है राधा मदन मोहन जी मंदिर, और वहाँ पर स्थापना किया उसका। जब वो मंदिर बन रहा था तो सनातन जी महाराज वो मूर्ति की सेवा किसी और को देकर नंदगांव चले गए थे, वहाँ पर भजन करते थे वो। और कहते हैं 1670 साल में ये मंदिर तैयार हो गया। लेकिन जब मंदिर तैयार हो गया तो सनातन जी महाराज दुनिया में नहीं थे, उसके पहले चले गए थे। तो वृंदावन में अभी के समय में बना हुआ सबसे पहला मंदिर है वो। 400 साल के इतिहास के पहले सब ब्रज लुप्त हो चुका था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो सबसे पहला मंदिर निर्माण हो गया राधा मदन मोहन जी का। तो ये संक्षेप का इतिहास है मदन मोहन जी का मंदिर का। मदन मोहन जी मंदिर की जो मूर्ति है, बार बार खुलते हैं, तीन बार तो बंद किया उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के बंसुरी के अवतार हुए हैं, उनका नाम है श्री हित हरिवंश। हरिवंश मतलब बांसुरी, और यह उनका ही चित्रपट है। श्री हित हरिवंश गोस्वामी महाराज का ये मंदिर है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। वो भगवान के बंसी के अवतार है, उनका अवतार मध्य प्रदेश में हुआ था। जब वो बड़े हो गए तो यहाँ वृंदावन में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। वो शिवजी के बड़े भक्त थे। सब लोग सुन रहे पीछे, सुन रहे कि नहीं? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। आप बैठ जाओ मेरे पास, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठो। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो शिवजी के भक्त थे, लेकिन वो बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन वो किसी मन में कामना रख के शिव जी की सेवा नहीं करते थे। वो निष्प्रभ भक्त थे शिव जी के। तो शिव जी भक्ति से उनके प्रसन्न हो गए कि भाई कोई मेरे पास आता है तो कुछ ना कुछ मांगता है, ये ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा है। तो उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं, बोलते आत्मदेव मैं तुम्हारे भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ देना है आपको। तो आत्मदेव कहते हैं कि मैंने कभी कुछ मांगने के लिए आपका भजन नहीं किया है, ना अभी मेरे मन में कुछ इच्छा है, ना कोई हेतु है। तो कहते हैं आपके भजन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे आप वरदान मांगो। बोलते नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शिव जी कहते हैं कि हम जहाँ भी दर्शन देते हैं वरदान देते ही हैं और आपको लेना ही होगा, मांगो। तो आत्मदेव कुछ सोचता है क्या मांगू, कुछ इच्छा तो है नहीं। बाद में सोचकर बताते हैं कि आपका शिव जी का आपका जो प्रिय वस्तु है वो मुझे दे देना, आपको डियर मोस्ट क्या है वो दे दो मुझे आप। तो शिव जी ये मांग सुनकर नाचने लगते हैं कि आज तक किसी भक्त ने मुझे क्या प्रिय हो मांगा ही नहीं कभी भी। वो तो अच्छी पत्नी दो, अच्छा पति दो, अच्छा शक्ति दो, सिद्धि दो, पावर दो, यही बात बताते रावण हिरण्यकशिपु सब जितने मिले उनको सबने अपने लिए कुछ मांगा, लेकिन मुझे क्या प्रिय है ये पूछा नहीं कि आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं। ये पहला आदमी है जो बोला है कि तुमको जो प्रिय है वो दे दो। तो आनंद से उन्होंने कहा कि तुम्हारे कुएं में आप सुबह उतरना, स्नान करने के बाद में एक बोगदा मिलेगा आपके कुएं में, उस बोगदे के अंत में मेरी प्राण प्रिय वस्तु मैंने रखी हुई है, उसको आप ले लेना। तो रात में ही उसको नींद नहीं आती, उधर ही उठ जाता है, स्नान करता है बीच रात में। और पुराने जमाने में कुएं में सीढ़ियां हुआ करती थी, अभी भी है बहुत सारे कुआं में। तो वो अनेक बोगदे भी हुआ करते जहाँ से जल आता था जमीन के अंदर से। तो वो बोगदे में घुस गए, बड़ा बोगदा था वो, उसके एंड में उनको अभी आपने जो दर्शन किया राधा वल्लभ जी वो कुएं के भोगदे के एंड में मिले उनको। श्री राधा वल्लभ लाल की। तो भगवान ने बता दिया शिव जी ने कि उनके प्राण प्रिय वस्तु क्या है। उनकी प्राण प्रिय वस्तु श्री कृष्ण भगवान है, जो राधा जी के वल्लभ है यानी प्रिय हैं। तो विग्रह उनको उधर कुएं प्राप्त हुए थे। तो शिव जी ने कहा कि इनका जो मिलेगी वस्तु उनका पूजन करना आप। तो उस दिन से आत्मदेव ब्राह्मण राधा वल्लभ जी का सेवा करने लगे। गृहस्थ थे, उनके बीवी थी, बच्चे थे। तो एक दिन जब ही मध्य प्रदेश से हित हरिवंश, जो बंसी के अवतार हैं, वो जब जवान हो गए तो उनको ब्रज में जाने की इच्छा हुई। तो उनको भगवान ने स्वप्न दिया कि तुम वृंदावन चले जाओ और वहाँ पर आपको एक ब्राह्मण मिलेगा आत्मदेव नाम का। जैसे ही वो मिलेगा उसकी कन्या आप विवाह में स्वीकार कर लेना और वो मुझे आपको अर्पण करेंगे, वो भी ले लेना और मेरी सेवा करना। उसके पहले ऑलरेडी तो दो विवाह हो चुके, दो पत्नियां घर में थी उनकी, लेकिन भगवान के भक्त थे वो, तो विरक्त होकर आ रहे थे। और यहाँ पर आत्मदेव को स्वप्न दिया कि मैं मेरे बंसी के अवतार को भेज रहा हूँ, हाँ, तो जैसे वो मिलेंगे आपको, आपको समझेगा अंदर से कि यही वो हैं, तब आपकी कन्या उनको विवाह में अर्पण करना और मुझे दहेज में दे देना। तो यथावकाश वो दोनों वृंदावन में मिलते हैं। उनको एक दूसरे को देखकर इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि वो गले लगाते हैं, आलिंगन देते हैं, रोते हैं, प्रेम से बड़ा आनंद का अनुभव होता है। तो फिर वो आत्मदेव ब्राह्मण भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी बेटी उनको शादी में देता है और दहेज में भगवान को अर्पण कर लेता है। तो फिर कुछ समय बाद में हित हरिवंश जो है अपने पत्नी, नए पत्नी को अपने घर में भेज देते हैं मध्य प्रदेश में, और अकेले विरक्त होकर यहाँ पर रहते हैं। हमारे हॉस्पिस के बाजू में ही वो जगह है जहाँ पर हित हरिवंश ने वन में निवास किया था भगवान राधा वल्लभ को लेकर। एक बड़ा वृक्ष है वहाँ पर, पुराने ज़माने में वृक्ष में बड़े बड़े होल हुआ करते थे, उसको हम कहते हैं ढोली ढोली। इतना बड़ा कमरा जैसा जगह होता था पेड़ के बीच के अंदर, लोग वहाँ रहते भी थे, साधु लोग भजन भी करते थे। तो उस पेड़ के अंदर तीन ऐसे होल थे कमरे जैसे, एक में ठाकुर जी राधा वल्लभ जी, एक में बैठकर ये भजन करते थे और एक में ठाकुर जी की पूजा का साहित्य वस्त्र वगैरह अलंकार रखते थे। तो उनके वहाँ रहने से, भजन करने से वो जगह इतनी सिद्ध हो गई कि सब लोग द्वेष भूल गए। शेर आके गले मिल रहा है हिरण को, हाथी आके सिंह को गले मिल रहा है, सबका द्वेष शत्रुत्व सब खस, एवरीबॉडी गेट्स फ्रीड फ्रॉम एनिमिटी। इतना प्रभाव उस जगह पर निर्माण होता है। एक साधु जो होता ना, जहाँ भजन करता है वो जगह पवित्र हो जाती है। उस जगह पर जाने के बाद में आप भी पवित्र हो जाते हो। आपके मन में किंतु परंतु है, द्वेष है, तो उस जगह पहुँचने पर आपका भी द्वेष समाप्त हो जाता है। तो फिर एक डाकू था, उसका नाम था नरवाहन। सब लोग ध्यान से सुनना, नींद आए तो खड़े हो जाना लेकिन सोना नहीं। छोटी सी कथा है, समाप्त करनी पड़ेगी दो मिनट के अंदर। जैसे ये पर्दा खुलेगा हमको भागना है उधर, ध्यान रखना। तो नरवाहन राक्षस एक डाकू था, बहुत भयंकर था वो, बहुत शक्तिशाली था और लोगों को लूटता था। लूटने के बाद में कपड़े उतार कर पेड़ में उल्टा टांगता था, ऐसी स्टाइल थी उसकी। तो इतना खूंखार था वो, उसने ज़बरदस्ती सबका जमीन, वृंदावन की बहुत सी ज़मीन उसने कब्जा कर ली थी अपने बल से, और दिन दहाड़े लोगों को लूटता था वो। उसके कान में खबर आई कि सबसे बड़ा फेमस आदमी वृंदावन में मैं ही हूँ, लेकिन कोई साधु आ गया है, वो इतना फेमस हो रहा है कि वहाँ पर उसके घर के आसपास सब लोग शेर आके गले मिलते हैं, उसकी कीर्ति बढ़ रही है। तो मैंने कहा था कालेघाट में द्वेष, उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। तो बोला कि मैं उसको नष्ट कर दूंगा, मुझसे अधिक कीर्तिमान यहाँ पर कोई नहीं हो सकता है, ओनली मी, आई एम द किंग ऑफ दिस प्लेस। तो निकलता है वहाँ से तलवार लेके, राज वस्त्र पहन, राजा है ना वो, डाकुओं का राजा है, उसका भी किंगडम था वहाँ पर। वहाँ से निकलता है तलवार लेके, राज वस्त्र पहनता है, जूते पहनता है, अलंकार पहनता है, मुकुट पहनता है, तलवार लेता है हाथ में, निकलता है। कुछ देर बाद में समझ में आता है उसको, अरे साधु को मारने के लिए तलवार की जरूरत क्या है, तलवार फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद घोड़ा भी छोड़ देता है, उसके बाद मुकुट भी उतार के फेंक देता है। उसके बाद वो जमुना जी के रेती में चलता है तो उसके जूते में रेती घुसती है, तो जूता निकाल के फेंक देता है। उसके मन में क्रोध है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है वो, उसके मन में बहुत क्रोध है कि मैं कभी पकड़ूंगा उसको मारूंगा। एक एक अपनी जो कीमती वस्तु है वो निकाल के छोड़ रहा है वो। आखिर में सारे अलंकार सारे वस्त्र सब उतारता है, केवल एक लंगोटी पहन के वहां पहुंचता है। उसको पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ, एक एक चीज वो छोड़ देता है क्योंकि एक विरक्त साधु के एरिया में घुस रहा है वो। तो उसकी विरक्ति का परिणाम उसके मन में हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने क्रोध में है। वो केवल नंगे पैर, कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं, हाँ कोई अलंकार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन घूर में आंखों में खाली अग्नि है एक प्रकार क्रोध की, पहुंचता है वहां पर और इस साधु को, हरिवंश गोस्वामी को घूर घूर के देखता है। यही है वो, तू ही है वो। तो हरिवंश क्या बोलते हैं उसको, अरे नरवाहन प्रभु निहार, मुझे को देखते हो, प्रभु को देखो। तो वो ऐसे मुड़ते हैं और प्रभु को देखते हैं जो पेड़ के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे ही प्रभु को देखते हैं उनका सारा क्रोध द्वेष ईर्ष्या नष्ट हो जाती है और झट से आंख में आंसू आते हैं, पवित्र हो जाता है वो। भगवान से भी अधिक दयालु साधु होते हैं। कालिया के लिए भगवान ने बहुत टाइम तक नृत्य किया उसके सर पे, तब जाके उसका विष निकला। और हित हरिवंश ने केवल बोला देखकर उधर देखो, तो एक क्षण में वो शुद्ध हो गया। बताओ कौन पावरफुल है, भगवान के उसका भक्त। भगवान जानबूझ के अपने भक्त को अपने से अधिक पावरफुल बनाते हैं। तो कुछ ही क्षणों में वो शुद्ध भक्त बन गया और रो रो कर चरणों में गिर गया महाराज के। बोले महाराज माफ करना, मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आप इतने साधु हैं, आपके प्रभाव से मैं भी शुद्ध हो गया, मुझे आपका शिष्य बन के स्वीकार कीजिए। तो शिष्य बन गया उनका वो, और वापस लौट के गए नहीं अपने राज्य में। तो उनको क्या लगा, लोगों को, उनके सरदारों को, कि जंगल में गए होंगे, कोई जानवर ने खा लिया होगा, पता नहीं क्या हो गया, राजा लौट के आए नहीं, जंगल में गया था लेकिन लौट के नहीं आया। ये तो वहीं पर फकीर बन गए, साधु बन गए, और फिर वृंदावन में घूमते थे वो लोगों की रक्षा करते करते। तो एक दिन क्या हो गया, उधर समझे कि अपना राजा मर गया, तो कोई योग्य व्यक्ति को राजा बना दिया और उनका वही स्टाइल में चालू हो गया लूटमार। तो उन्होंने एक आदमी को लूटा वृंदावन में और कपड़ा उतार के टांग दिया उल्टा, और वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक बुढ़िया वहाँ से गुजर गई, गुजर रही थी, वो बोले क्या हो गया, बोले मुझे लूट लूट के बांध दिया है। तो बोले आज बचाओ बचाओ मत बोलो, नरवाहन नरवाहन करके पुकारो। नरवाहन रात को गश्त लगाता है और दुखियों का दुख दूर करता है। जैसे नरवाहन की आवाज़ लगाता है, नरवाहन वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं, अरे ये आदमी तो निर्वस्त्र होकर उसको उल्टा टांग दिया है, ये मेरे ही सरदारों का काम है, ये मेरे द्वारा बताया गया स्टाइल है। तो उसको वो छुड़ाता है, उसको वस्त्र पहनाता है और उसको लेकर सीधे अपने किंगडम पहुंचता है जहाँ से वो आया था। बोलता है ये मेरा आदमी है, सारे गहने इसके वापस कर दो, सब कुछ वापस कर दो, इसको पालकी में बिठा के घर भेज दो। नरवान संत बन चुका था, संतों के संग से दुश्मन राक्षस भी संत बन जाता है। कितनी कहानियाँ हैं हमारी, कितनी कहानियाँ हैं। तो वो नरवान फिर वो कहते हैं गुरुजी से एक दिन कि मेरे पास इतनी भूमि है महाराज, मैं आपको उदान करना चाहता हूँ। अभी मैं बाण लेकर मारूंगा यहाँ पर जमुना किनारे खड़े होकर, और बाण जहाँ तक पहुँचेगा वो सारी भूमि आपको दान कर दूंगा। तो उसने वहाँ पर खड़े होकर, हमारे हॉस्पिस के पास जगह है ना मदन टेर, वहाँ खड़े होकर उसने बाण मारा है और वो जमुना जी के पार गया है। तो सारा वृंदावन धाम जो है उसने अपने गुरु को दान कर दिया। फिर गुरु जी ने और शिष्यों को उसको बांटा, और इसलिए जमुना जी के पार एक स्थान है मानसरोवर। मैंने आपको बताया था ना कि भगवान रास में एक बार देर से आते हैं तो राधा रानी रूठती है और जमुना जी को पार करके वहाँ जाके रोती है, तो एक कुंड बनता है, नाम क्या उसका, मानसरोवर। तो मानसरोवर भी आज इनके ही आधिपत्य में है, मतलब इनके सेवकों के आधिपत्य में है ये मंदिर जो है, इसका नाम राधा वल्लभ मंदिर है। तो इनकी जमीन वहाँ पर भी है, मानसरोवर इनके अंडर है, इनके लोग वहाँ पर मानसरोवर की सेवा करते हैं। और यही हरिवंश जी का मंदिर है। तो राधा वल्लभ जी मंदिर जो है ये हमारा बहुत प्रिय मंदिर है। हमारे गुरुदेव जब वृंदावन में आए थे, तो अभी जो मैं जिनको ऊपर मिलने गया था ना, गोरे गोरे बैठे हुए थे वहाँ पर, देखा क्या आपने, कुछ लोगों ने देखा, बाकी देखा नहीं। उनका नाम है राधेश लाल जी महाराज, वो अभी कुछ 70 वर्ष के आयु के होंगे, हमारे महाराज 66 के आए हैं, तो हम एक ही उम्र के थे। जब महाराज जी यहाँ पर हमारे आए थे तो वो भी कुछ 19 साल के थे, ये कुछ 22 साल के थे। तो इनकी पहचान हो गई और इतने अच्छे मित्र बन गए कि दिन रात बातें करते थे। इनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, फिर भी रात भर बातें करते थे। अभी मैं उनका अनुवाद करता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि अभी अनुवाद करने के बाद में उतना आनंद नहीं आता जितना पहले आता था। तो वो उधर जगह जगह है मंदिर में, वहाँ पर वो बैठते थे और बातें करते थे। तो हमारे गुरु जी की मित्रता की वजह से हमारी पर भी कृपा है, उनकी प्रेम करते हैं बहुत वो, और उनके परिवारों की भी हम सेवा करते रहते हैं। तो गोस्वामी महाराज बड़े दयालु हैं और अधिकारी यानी गुरु हैं यह संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के, लेकिन हमारे गुरु जी प्रेम की वजह से हम पर भी प्रेम करते हैं और हम बड़े अधिकार से उनके पास आते हैं और प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तब उन्होंने ही हमारे लिए राधा वल्लभ जी का महाप्रसाद का व्यवस्था किया है। कहते हैं राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, भगवान बड़े दयालु हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत कोमल हैं। और अभी उनकी आरती होने वाली है, राधा रानी उनके बाजू में छोटी सी राधा रानी है, मूर्ति नहीं है, उनका एक सिंबल बना के रखते हैं। राधा वल्लभ जी के शरीर के अंदर राधा रानी है, तो लंबी चोटी है, लंबी चोटी ऐसे ऐसे, वो राधा रानी का सिंबल है, वो कृष्ण के अंग में ही समाई हुई है। और राधा वल्लभ जी बड़े ठाट के ठाकुर हैं, उनकी बड़ी ठाट से सेवा होती है, गीत गाते हुए उनकी सेवा होती है, उनको भोजन करने के लिए उठाकर भोजन कक्ष में लेके जाते हैं अंदर। अभी जब बंद है ना पर्दा, ठाकुर जी को एक्चुअली उठाकर लेके जाते हैं और डाइनिंग हॉल में बिठाते हैं और वहाँ पर भोग लगाते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर दोबारा आके खड़े हो जाते हैं और सुबह उनको फिर और कहीं लेके जाते हैं, वहाँ स्नान कराते हैं, फिर वो गाय चराने जाते हैं तो उनका गाय चराने के भाव से उनको घुमाते हैं। ऐसा बहुत भाव से सेवा होती है। और ऋतु के अनुसार, जो अभी होली का चल रहा है ना मौसम, उसके अनुसार गीत गाते रहते हैं उनके आनंद के लिए। हम जब पहुँचे तो पीछे लोग बैठ के गा रहे थे ना, मंद मंद आवाज़ में, बहुत क्लासिकल सॉन्ग में गा रहे थे वो लोग। दिन भर यहाँ पर राजभोग के समय, आरती के समय, संध्या के समय, होली के समय बड़े प्रेम से भजन गाते हैं, और वो वाणी जो है बहुत पवित्र वाणी है, उसको हरिवंश वाणी कहते हैं। हरिवंश महाराज ने लिखा हुआ है सब भगवान के गौरव में, उसी को ये लोग दोहराते रहते हैं, गाते रहते हैं समय के और ऋतु के अनुसार। तो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं वृंदावन में आकर, वृंदावन में से अनेक मंदिरों में से प्रमुख मंदिर में से हमको ठाकुर जी का राजभोग प्रसाद भोजन करने को मिल रहा है। सब लोग बड़े प्रेम से पाना, उसको शांति से पाना। जब हम प्रसाद पाते हैं ना तो बातें नहीं करनी चाहिए, साक्षात भगवान हमारे सामने भोजन के रूप में आने वाले हैं। प्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान जब कोई कुछ चीज़ ग्रहण करते हैं ना तो वो आँखों से ग्रहण करते हैं, हरे कृष्णा मैं जानता हूँ आप लोग भूखे हो, लेकिन कुछ ही समय में उसका वर्णन कर रहा हूँ जो आने वाला है। तो भगवान और उनके प्रसाद में अंतर नहीं होता है, इसलिए प्रसाद को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर वन, जितना चाहिए उतना लेना चाहिए और जितना लिया उतना खाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। प्रसाद को छोड़ देना बहुत बड़ा अपराध है। और प्रसाद ग्रहण करते समय बातें नहीं करनी चाहिए, जो आप खा रहे हो उसका भगवान है ये समझ के ग्रहण करना चाहिए। भोजन के रूप में आ रहे हैं, उसको बड़े शांति से, बड़े ध्यानपूर्वक भोजन करना चाहिए, तब भगवान की पूरी कृपा आपको प्राप्त होती है। प्रसाद कैसे खाना उसका भी साइंस है। हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या कल्चर है, हाथ में थाली है और दुनिया भर की पावर लंच बिजनेस की बातें सब करते रहते हैं और खाने की ओर देखते नहीं, आधा खाना छोड़ देते हैं चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे वो कल्चर नहीं, हम लोग सब बैठते हैं, खड़े होकर केवल जानवर खाते हैं, बैठकर आदमी खाता है और बैठकर प्रसाद खाता है, पलटी मार के बैठता है, हाथ से खाता है। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है और धोने के बाद हाथ से खाना ज़रूरी है। और वो मन लगाकर, भाई ये रोटी है भगवान ने खाई हुई है, ये सब्जी भगवान ने खाई हुई है, ये पकौड़ा भगवान ने खाया हुआ है, ये मिठाई भगवान ने खाई हुई है, ऐसा ध्यान करके करके खाता है वो। जो भी बातें करना है हाथ धोने के बाद में करता है बातें। ये भी एक साइंस है भक्ति, यानी कि हर चीज़ एकदम सुपर फाइन बन जाती है, खाना खाना भी सुपर फाइन बन जाता है। गंदी चीज़ नहीं खाते हैं, अच्छी चीज़ खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। तो आप लोग इतने धाम में आए हो, ये चीज़ लेकर जाओ यहाँ से कि मोह के अंदर कोई चीज़ जानी चाहिए, नहीं चाहिए जो भगवान को अर्पण न की गई हो, वही जाएगी मोह के अंदर जो भगवान को अर्पण की गई हो। कोई मनुष्य है, जानवर भोग ले जाता है, ऐसे खा लेता है, हम लोग मनुष्य है, हमको भगवान को भोग लगा कर खाना चाहिए। हरे कृष्णा। एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको ग्रुप पर मैसेज भी दिया था, कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो स्टॉल पे मालाएं खरीद रहे, तुलसी की माला, उनको लगता है ठीक है अच्छी दिखती है बहुत पहनने से, अच्छा देखिएगा, लेकिन तुलसी माला पहनने का बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। तुलसी महारानी का शरीर है ये, हाँ, उसकी लकड़ी है, उसको काष्ट कहते हैं। गले में उसको माला के रूप में वही व्यक्ति पहन सकता है जो भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाता। जो भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाता वही इस तुलसी माला को पहन सकता है। अगर भगवान को भोग लगाए बिना आप शाकाहारी अन्न भी खाते हो तो भी इसको नहीं पहनना चाहिए। शाकाहारी अन्न भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना चाहिए, और इस गले के नीचे और कोई वस्तु उतरनी नहीं चाहिए जो भगवान को भोग नहीं लगाई गई है। वही व्यक्ति ये तुलसी की माला पहनने के योग्य है। तुलसी की माला पर जप करने के योग्य वही व्यक्ति है। उस व्यक्ति को मांसाहार नहीं करना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इतना आपकी तैयारी है तो वही आप तुलसी माला खरीदो और उसको पहनो। तो ये आप तुलसी माला खरीदो और उसको जपो उसके ऊपर, नहीं तो कदम की माला पे जपो, आम की माला पे जपो, हाँ। लेकिन तुलसी माला पे जपना है, तुलसी माला पहनना है, तो आपको ये नियम पालन करना पड़ेगा। अगर उसके बिना आप पहनते हो फैशन के रूप में तो आपके हाथ से तुलसी का अपराध होगा और आपके जीवन में बहुत नुकसान होगा। इसलिए हमारे हॉस्पिटल में, मंदिरों में, कहीं भी स्टॉल पर तुलसी की माला हम बेचते नहीं हैं। तुलसी की माला उसको देते हैं ऑफिस में, घर में, जो उसके तैयारी में आ गया है तो ये उसको देते हैं। आम तौर पे दुकान में उसको रखते नहीं हैं हमारे मंदिर में। कारण क्या है, लोग उसका फिर अनजाने में अपराध कर बैठते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। कॉलेज के सोचते बच्चे की फैशन है, अच्छा दिखता है गले में, अमिताभ ने पहना था दीवार में, तो खुद पहनते हैं उसको वो भाव से। तो हमारा काम है आपको नॉलेज देना ताकि आपको पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है, अपराध क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और बहुत अच्छा चीज़ है ये। राधे जरा उसको शांत करो ना। तुलसी माला गले में पहनने से यमराज और उसके दूत आपको छू नहीं सकते, लेकिन तैयार होने के बाद। अगर कोई मांसाहार करके यमराज के भय से उसको पहनेगा, यमराज आके उसको भी पकड़ेगा और तुलसी माला को पकड़ के ले जाएगा ऐसे आपको क्योंकि वो ढोंग है ना वो। लेकिन तुलसी माला के अनुकूल जो नियम पालन करता है उसको यमराज छू नहीं सकते। तुलसी के बहुत अनंत लाभ है। तुलसी माला पहनकर जो मरता है वो भगवत धाम जाता है। इसलिए आपको मैं सावधान करना चाहा। अभी हम लोग सब लोग भागते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।